মানুষ দেহে মুকতকি নৌকা ভগত করে যায় ভরম কা ধোকা। ये মানুষ দেহে মুক্তি কি নৌকা হ্যাঁ, इसको मुक्ति की नौका क्यों कहा गया है? क्योंकि वाणी कह रही है भव सागर में आए के नारायण चित राख मंगत मिले सत शांति सुन सतगुरु की साख। तो सतगुरु की शिक्षा को सुन, क्या शिक्षा है इस भव सागर में जो तेरा जन्म हुआ है, जो तू आया है, इसमें तूने चित्त में नारायण रखना था। इसको भव सागर क्यों कहते हैं? ये दुखों का सागर है, बेचैनी का सागर है। जिस प्रकार सागर में खारा पानी होता है, जितनी आप डुबकियां सागर में लगाएंगे उतना ही पेट में वो नमक का पानी जाने की संभावना निरंतर बनी रहती है। जितना पानी अंदर जाएगा उतनी ही बेचैनी मन के अंदर पैदा होगी। उसी प्रकार जितना संसार मन के अंदर जाएगा ये जीव के वास्ते बेचैनी का कारण बने। इसलिए इस बेचैनी रूपी भव सागर से मुक्ति पाने के लिए ये मानव देह ईश्वर ने हमको इसलिए दी थी कि वो ये जो हमारी कल्पना है कि संसार में सुख है, मेहनत करूंगा तो संतोष मुझको प्राप्त हो जाए, तो कह रहे हैं ये भ्रम का धोखा है। तेरे मन में केवल भ्रम है ये, इसलिए तू अपने साथ खुद ही धोखा कर रहा है। इसलिए वाणी याद दिला रही है कि ये मानुष देह ये मुक्ति रूपी नौका है। जिस प्रकार नौका में बैठकर मनुष्य खारे पानी के सागर को पार कर सकता है, उसी प्रकार जो ये संसार में सुख की कल्पना है, इस कल्पना के द्वारा जो हम संसार में बेचैनी भोग रहे हैं, तो ये केवल भ्रम है। ये तेरी इच्छा कभी भी पूर्ण नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि संसार में जो भी मनुष्य आया, आज तक जहां तक इतिहास उपलब्ध है, ऐसा कभी हुआ ही नहीं। इसलिए तेरे साथ भी ये कैसे हो सकता है? इसलिए तेरी गलतफहमी है। तूने नारायण को चित्त में रखना था, नारायण को मन में रखना था, तू संसार को मन में रखे हुए है और फिर भी सुख की चैन की कल्पना कर रहा है। ये तेरा काम कभी नहीं। इसीलिए सारे सत्पुरुष एक ही बात कहते हैं, तो मानव जन्म मिला है तो तुझको ईश्वर की भक्ति करनी चाहिए, आध्यात्मिक जीवन व्यतीत करना चाहिए। लेकिन आप बार बार सत्संग सुनने के पश्चात भी एक ही चीज पाते होंगे कि संसार से निश्चय हटता नहीं, सुखों का निश्चय संसार में बना ही रहता। कितनी भी कोशिश कर लो ये निश्चय बुद्धि से हटता नहीं। तो इसलिए सत्पुरुष पूरा विज्ञान पेश करते हैं, गीता के रूप में, संत विलास के रूप में, उपनिषद के रूप में, तो पूरी अध्यात्म विद्या जो है या जो ईश्वर विज्ञान है, ये सत्पुरुष बार बार क्यों प्रकट करते हैं? क्योंकि मैंने अपने बारे में सीखना है। सारे जगत को, सारे सुख के चक्कर को बार बार वाणी भ्रम करके कह रही है ये मनुष्य का या जीव का भ्रम है कि इसमें से मुझे सुख मिल जाएगा, चैन मिल जाएगा। जो चीज जहां है ही नहीं वह मिलेगी कहां से? इसलिए इस भ्रम का निवारण केवल तब हो सकता है जब इस अध्यात्म विद्या को या अध्यात्म विज्ञान को या ईश्वर विज्ञान को हम जैसा वर्णन किया गया है वैसा सीख लें। इस विज्ञान की सबसे पहली देन क्या है? सबसे पहली देन यह है कि सारे ऋषि सारे सत्पुरुष हमको पहले यही सिखाना चाह रहे हैं, तू है कौन? वो कहते हैं तू जीव है जो सुख भोग रहा है, दुख भोग रहा है, बेचैनी भोग रहा है। तू जीव है और तेरी बेचैनी का कारण कौन सा है? तेरे दुखों का कारण कौन सा है? तेरी ही देह, तेरी ही इंद्रियां, तेरा ही मन तेरी बेचैनी का कारण, तेरे दुखों का कारण। अब बताइए मैं कैसे विश्वास कर लूं? मैं कैसे विश्वास कर लूं कि मैं जीव हूं और मेरी ही इंद्रियां, मेरा ही मन, मेरी ही देह और देह के द्वारा मेरा ही संसार, ये मेरे ही दुख का कारण, मेरी ही बेचैनी का कारण, ये मैं कैसे स्वीकार करूं? तो इसीलिए वो अगला विज्ञान पेश है। तू संसार में आ तो गया लेकिन आया कहां से? तेरा बचपन का स्वभाव, बचपन की बुद्धि की तीव्रता या बचपन की ही मूर्खता, ये तू लेकर पैदा होता है। कितने बच्चे स्कूल में देखा नहीं है आपने, उनकी बुद्धि में कितना फर्क होता है। शिक्षा तो अब स्कूल जाकर ग्रहण करनी शुरू की है, लेकिन सब टीचर क्या करते हैं, जो बुद्धिमान स्टूडेंट होता है उसको मॉनिटर बना देते हैं और पहले से आशा करना शुरू कर देते हैं ये स्कूल का नाम रोशन करेगा। तो टीचर है, जो अध्यापक है, उसको पता होता है कौन सा स्टूडेंट इसमें ब्रिलियंट है और कौन सा साधारण है। तो शिक्षा तो उसकी अब शुरू हो रही है, देखिए डिफरेंस कहां से आ गया। ऐसे ही स्वभाव में अंतर होता है। कोई बालक कितने शैतान होते हैं स्कूल के अंदर, दूसरे की चीजें चुरा लेते हैं, और कोई कितने भले होते हैं कि कोई परेशान हो रहा है स्टूडेंट अपनी चीज को दे भी देते हैं, जिसमें सेवा भाव होता है अपने नोट्स भी दे देता है, कोई नहीं आ पाया एब्सेंट था कहता भी कोई बात नहीं मेरी कॉपी ले जा अपने नोट्स पूरे कर, और दूसरा स्टूडेंट खुश होता है अच्छा ये पीछे रह जाएगा मैं आगे निकल जाऊंगा, नोट्स नहीं देगा उसको। ये स्वभाव में परिवर्तन, ये कहां से आया? तो सत्पुरुष उसका विज्ञान पेश करता है कि जिस समय जैसे कि इस वर्तमान देह में मैं हूं, जिस दिन इस देह की मौत होगी उस दिन ये इंद्रियां मेरी ही इंद्रियां हैं और मेरा ही मन है और मैं हूं, तो मैं अपने मन और अपनी ही इंद्रियों के सहित इस देह का त्याग करूंगा और ये मैं मेरा मन मेरी इंद्रियां ये तीनों प्रभु के संग ही उस समय निवास करें। और जिस मन जिस जिन इंद्रियों को जिस निश्चय को लेकर मैं प्रभु के गोद में गया हूं, प्रभु पुनः अपनी गोद से उतार कर मुझको यही मन यही इंद्रियां प्रदान कर देते हैं और नई देह प्रदान कर देते हैं। ईश्वर मेरा संग ना मौत के वक्त छोड़ते हैं ना जन्म लेने के वक्त छोड़ते हैं, तो बिना ईश्वर के मैं एक सेकंड के लिए भी नहीं रहता, लगातार ईश्वर का संग मेरा बना रहता है। लेकिन जिस स्वभाव को जिस कर्म फल को जिस सोच को लेकर मैं ईश्वर की गोद में गया था मरते वक्त, वही सोच वही निर्णय और वही संस्कार सब प्रभु मुझको एज इट इज प्रदान कर देते हैं। बस अंतर एक ही होता है, जब नई देह मिलती है उसमें नया प्रारब्ध मिलता है, पिछली देह थी इसमें पिछला प्रारब्ध था, जो जीवन भर मैं कर्म करता रहा जिस निश्चय को लेकर वो सारे के सारे कर्म फल मेरे संस्कार के रूप में मन में इकट्ठे हो गए। अब वर्तमान देह मुझको इस वास्ते मिली है कि उन कर्मों का फल इस देह में मुझको भोगना होगा। इसीलिए सारी अध्यात्म विद्या एक ही चीज सिखा रही है कि तू ईश्वर का होकर मानव जीवन जी। ये मुक्ति की नौका है। मुक्ति का मतलब क्या है? मन इंद्रियां और देह के बंधन से तू मुक्त हो सकता है। कैसे मुक्त हो सकता है? क्योंकि जो इनके बंधन से मुक्त है उसको हम ईश्वर कहते हैं। वो खुद इस देह के अंदर उसी प्रकार मौजूद है जिस प्रकार मैं इस देह में मौजूद हूं। इसीलिए इस सारा का सारा विज्ञान बड़ा ही एग्जैक्ट विज्ञान है। ये हमारे वेदों में, उपनिषदों में, महाराज जी की वाणी में, गीता में बार बार बयान किया जाता है। देखिए एक सामवेद का उपनिषद है, छांदोग्य उपनिषद। वहां उस स्थिति का बयान कर रहे हैं जिस समय मेरी वर्तमान देह खत्म होती है उस समय मेरी क्या स्थिति होती है। वाण मनसी संपद्यते मनः प्राणे प्राणस तेजसी तेजः परस्याम देवतायें। कहते हैं वाणी मन में समा जाती है। वाणी का मतलब है क्या है? जो हमारी इंद्रियां हैं उसके लिए या इसको वाण अर्थात वाणी कहते हैं। जो इंद्रियां हैं वो मनस मन से संपद्यते, वो मन में विलीन हो जाती अर्थात मन के अंदर प्रवेश कर जाती। ये स्थिति वैसी ही होती है जैसे कि जिस समय हम सोते हैं तो आप देखते हैं क्या होता है कि मुझको शरीर संसार का होश नहीं रहता, इनका बोध नहीं रहता। तो ये क्या स्थिति है? ये मेरी इंद्रियां मन के अंदर प्रवेश कर चुकी, लेकिन मन के अंदर संकल्प चल रहा है इसीलिए स्वप्न की रचना तैयार हो जाती है। स्वप्न में इन्हीं इंद्रियों से मैं दृश्य देखता हूं। आगे कहते हैं मनः प्राणे, और मन प्राण में विलीन हो जाता है। इसीलिए जो गहरी नींद में सो रहा है उसकी श्वास तो चल रही है, प्राण तो चल रही है, लेकिन उसको कोई बोध नहीं, ना स्वप्न देख रहा है ना संसार का बोध है। इसीलिए वो चैन की नींद सो रहा है, वो चैन में है। इसलिए हर व्यक्ति आशा करता है उसको गहरी नींद आए, स्वप्न ना दिखाई पड़े। तो देखिए इंद्रियां और मन इस जीव पर बोझ है या नहीं, ये प्रमाण यहीं से मिलता है कि जिस समय मन और इंद्रियों का बोझ इस जीव पर से उतरता है उस समय जीव बड़ा आराम महसूस करता है, बड़ा चैन महसूस करता है, बड़ी शांति महसूस करता है। और आगे कहते हैं प्राणस तेजस, प्राण तेज में विलीन हो जाते हैं। तेज कहते हैं इस देह के अंदर जो चेतन सत्ता सारे शरीर को चला रही है उसको तेज कहते हैं, उसी को कुंडलनी कहते हैं। तो ये प्राण ये श्वास जो है उस तेज में विलीन हो जाते हैं, लेकिन हमारे दैनिक जीवन में ऐसा नहीं होता। ये किसकी विलीन होती है? ये जिस समय मौत होती है उस समय ये श्वास ये प्राण कुंडलनी के अंदर विलीन हो जाते हैं। कुंडली ईश्वर शक्ति है जो देह का संचालन कर रही है, पूरी सृष्टि का संचालन कर रही है। और ये जो कहते हैं तेजः परस्याम देवकाया, और ये जो तेज है ये जो कुंडली शक्ति है ये परमात्म देव में विलीन हो जाती है, परमात्म देव के साथ एक हो जाती है। ये ऐसे समझ लिए जैसे कि दिन निकल रहा है तो सूर्य की किरणें मेरे उपयोग की है, मैं उनका उपयोग कर रहा हूं, मेरा जीवन चल रहा है, फसलें पैदा हो रही हैं, संसार चक्र चल रहा है। लेकिन जब रात्रि होती है तो ये किरणें सूर्य में विलीन हो जाती है, सूर्य के साथ एक हो जाती है। उसी प्रकार मौत के वक्त ये कुंडलनी मेरी इंद्रियां, मेरा मन, मेरे प्राण को लेकर प्रभु के साथ एक हो। ये देखिए इसीलिए मेरा कुछ भी नष्ट नहीं होता। और महाराज जी भी कह रहे हैं, गीता भी कह रही है कि मनुष्य का तुरंत ही पुनर्जन्म हो जाता है, अर्थात जीव को नई देह तुरंत ही मिल जाती है और उसमें उसी तेज से वही प्राण उदय होता है, उसी तेज से मन उदय होता है, उसी तेज से इंद्रियां उदय होती है। इसलिए देखा होगा जब बच्चा बाहर आता है संसार में, जब उसकी नाल काटी जाती है तब वो श्वास लेना शुरू करता है, प्राण चलता है, प्राण चलता है तो मन भी उसका उदय हो जाता है, इंद्रियां भी काम करना शुरू करता है। जिस प्रकार माँ की गोद से बालक बाहर आता है तो बेचैन होता है, माँ की गोद में वापस जाता है तो चैन से सोता है। उसी प्रकार जिस प्रकार मैं उस प्रभु की गोद छोड़कर मैं बाहर आता हूं तो बेचैन हो जाता हूं संसार। इस बेचैनी की छटपटाहट जो होती मेरे अंदर होती है उसका इलाज मैं संसार में तलाश करता हूं, तो भूला हुआ हूं कि मेरा जो असली पिता है, मेरी जो असली माँ है, वो तो मेरे अंदर है, इस देह के अंदर है, वहां से मैं बिछड़ गया था इसलिए बेचैन हूं। वो वापस माँ के पास यदि जाने की कोशिश करे तो चैन मिल जाएगा। यदि संसार में जितना दौड़ लगाएगा उतना ही जिंदगी बर्बाद करता जाएगा। इसीलिए ये जो मौत का प्रोसेस है ये मनुष्य को यानी जीव को ये जिंदा रहते हुए करना पड़ता है, ये सिमरन इसी का इलाज है। इसलिए आपसे कहा जाता है कि संसार में तू जो सुख की तलाश कर रहा है ये तुझको कभी नहीं मिलेगा। इसलिए सत्पुरुषों को का जो निर्णय है शास्त्रों में, उस निर्णय के अनुसार तू चिंतन करने की कोशिश कर, उस विद्या को सीख। इसी उपनिषद काल में ऋषि वर्णन कर रहा है, दुखम सर्वम अनुस्मृत काम भोगान निवर्तय, वहां से मार्गदर्शन हो रहा है कितने प्राचीन काल से। मत भूलो कि सब कुछ दुख ही है, अर्थात ये संसार पूरा का पूरा ये तेरे ही मानसिक बेचैनी को पैदा करने वाला है। इसलिए जीने का रास्ता मनुष्य के लिए क्या बताया, काम भोगान निवर्तय, कामनाओं और भोगों से निवृत्ति प्राप्त करो, ये तेरे जीने का रास्ता है। क्योंकि कामनाएं भोग तो तेरे मन में उठेंगी, क्योंकि पूर्व जन्म का मन लेकर आया है, पूर्व जन्म की इंद्रियां लेकर आया है, पूर्व जन्म का प्रारब्ध लेकर आया है, उस प्रारब्ध के अनुसार तेरी देह संसार में भीते चलेगी, फिरेगी, कर्म करेगी। लेकिन उस कर्म को तो अपना समझेगा कि मैं कर रहा हूं, उसको लक्ष्य समझेगा तो क्यों समझेगा, क्यों तू भूल गया है कि मैं जीव हूं, तू याद कर रहा है कि मैं देह हूं। इसलिए तेरी जो पहली गलती है कि तुझे पूरे जन्म भर सजा देता, पहली तेरी एक गलती पूरे जन्म तू सजा भोगता है और समझता है कि मैं प्रगति कर रहा हूं, उन्नति कर रहा हूं। इसलिए जिसने सत्पुरुष का आश्रय नहीं लिया, जिसने शास्त्र का आश्रय नहीं लिया, जिसने अध्यात्म विद्या को नहीं सीखा, उसका जीवन तो बर्बाद है। अपने आप के लिए वो कितना भी 30 मार्क का बनता रहे, लेकिन सारे ऋषि सारे शास्त्र एक सुर से कह रहे हैं कि बिना विवेक मनुष्य जो होई पशु समान जीवन सो। ब्रह्मा जी एक जगह और भी लिख रहे हैं संतरा, ये मानव जीवन जो ईश्वर रास्ते पर चलने में व्यतीत नहीं होता, ये जीवन पशु से भी नीच है, क्योंकि अनजाने में ही इसे पाप होता है और पाप की सजा भोगता है। इसे जो इंसान इस अध्यात्म विद्या को नहीं सीखता, इस विद्या अध्यात्म विद्या के अनुसार अपने निश्चय को नहीं बदलता, वो इंसान फिर पापी जीवन, भिकारी जीवन संसार में जीकर विदा होता है और अगला जन्म इससे भी बुरी हालत में उसको व्यतीत करने को मिलता है। इसलिए छूट नहीं है। इसलिए आप देखिए योग मार्ग का रास्ता सारे ऋषि बताए, महाजी ने क्या बताया, प्रेमी संसार के प्रोग्राम को सिंप्लीफाई कर, जितना तू सरल कर सकता है, छोटा कर सकता है, ताकि तेरे पास वक्त बचे सोच के लिए भी, इन विचारों को सीखने के लिए भी और प्रभु की याद करने के लिए भी। इसी वास्ते तुझको ये मानव देह दी गई, इसीलिए इस मनुष्य के अंदर सबसे पहले जब ये गुरु के अनुसार जीवन व्यतीत करता है, उसकी शिक्षा को सीखता है, तब सबसे पहले निश्चय से क्या होता है, कि मैं जीव हूं, और अपने ही मन, अपनी ही इंद्रियां, अपनी ही देह और देह करके संसार के बंधन में हूं, मैंने इनसे मुक्त होना है। मुक्त कैसे हो सकता हूं? मुक्त मैं इसलिए हो सकता हूं क्योंकि मेरे साथ प्रभु सदैव मौजूद है। जिस प्रकार मेरे साथ मन सदैव मौजूद है, उसी प्रकार प्रभु स्वयं सदैव मौजूद है और सारे जगत को चलाने वाले हैं वो, इसके कर्ता है वो। क्योंकि मैंने सूर्य की रचना नहीं की, मैंने हवा की रचना नहीं की, मैंने पानी की रचना नहीं की, मुझे पता है इस बात को, जिसने की उसका नाम ईश्वर है। इसीलिए सारे ऋषि एक बात बताते हैं, तू नाम का, मंत्र का, गुरु मंत्र का अंदर सिमरन कर, तो उसका सिमरन करेगा और ये ज्ञान तू पहले सीख लेगा कि संसार में क्लेश के अलावा मुझे फाइनली मिलना कुछ नहीं। ईश्वर का सिमरन इसलिए जरूरी है क्योंकि ईश्वर के अंदर जीवन है, वहां मौत नहीं है। ईश्वर रक्षक है क्योंकि इस देह की मौत हो गई, मेरा वश देह पे नहीं है, तब भी उसने मेरी इंद्रियां, मेरे मन को सुरक्षित रखा, मुझको भी सुरक्षित रखा, मेरे प्राण को भी सुरक्षित रखा, क्योंकि ये सब प्रभु के अंदर ही, प्रभु की गोद में ही चलेगा। इसलिए ऐसे प्रभु को मैं कैसे छोड़ सकता हूं? तो इसलिए जब इस विज्ञान को मैं इसी प्रकार सीखता हूं, इसको सत निश्चय कहते हैं, तब मेरे अंदर सत निश्चय आता है, ईश्वर विश्वास आता है कि मेरे जीवन का कर्ता, मेरे जीवन का मालिक, मेरे चैन का मालिक केवल प्रभु है, इसके अलावा पूरे ब्रह्मांड में दूसरी सत्ता है ही नहीं। इसको छोड़कर यदि मैं कोई भी कोशिश की तो मेरे भाग में बेचैनी आएगी, चैन दूर दूर तक आ ही नहीं सकता। ये सारे शास्त्रों का फाइनल निर्णय है। अब बताइए, जिसके अंदर ये विवेक आ गया, और ये विवेक आना चाहिए यदि मैंने संत प्रकाश ग्रंथ पढ़ा है, यदि मैंने सही प्रकार से सत्संग श्रवण किया है, यदि मैंने समता विलास पढ़ी है या गीता पढ़ी है, उसको समझा है, सही रूप में समझा है, तब सबसे पहला निश्चय तो मेरा यह टूटेगा कि मैं शरीर हूं। हर वक्त ये निर्णय, ये निश्चय तेरा टूटा रहेगा, हर वक्त तेरे अंदर एक संकल्प उठेगा, मैं जीव इस देह मन इंद्रियों के बंधन में हूं, मैंने दिन और रात इससे मुक्ति का प्रयास करना है, और इनसे मुक्त है कौन? तो प्रभु इससे मुक्त है, इस देह के अंदर खुद मौजूद है, तो मैं क्यों नहीं प्रभु के चरणों में जाता? जो मरते वक्त मैं तो रक्षा नहीं करता मन की, मैं तो इंद्रियों की रक्षा नहीं करता, वो प्रभु ही रक्षा करते, मैं तो अपने आप को भूला रहता हूं, और मेरे कर्म फल के अनुसार नई देह प्रदान करते हैं, लेकिन खुद फिर भी उपस्थित रहते हैं, चाहे कितनी भी गलतियां मैंने क्यों ना की। इसीलिए किसी भी जन्म में करूं, अंत में आना मैंने प्रभु के चरणों में ही है, तो ये जन्म बर्बाद क्यों करूं? यहां तो मुझे ये सत्संग मिला है, पूर्ण गुरु का ज्ञान मिला है, इसको त्याग कर मैं संसार के चक्कर में फंसकर क्यों जिंदगी बर्बाद करता रहूं? इसलिए मानव जन्म नकल करने के लिए नहीं है, ये अकल से चलने के लिए है। अकल कहां से मिलती है? शास्त्र से और गुरु से मिलती है, अवतार से मिलती है। मैंने उस अकल के अनुसार अपने निर्णय को बदलना है और ये मार्ग तय करना है। तो यदि तू सिमरन के मार्ग पर चल पड़ा, तो सिमरन में सफलता के लिए तुझे सादगी अपनानी ही पड़ेगी, जीवन को सरल सादा करना ही पड़ेगा, दूसरा कोई रास्ता है ही नहीं इसके लिए। तो ये नहीं कह सकता कि दुनिया में ख्वाब भी पूरे करता रहूं और ईश्वर का सिमरन में भी सफल हो जाऊं, ये असंभव बात है, ये टग ऑफ वार है, रस्सा कशी होती ना, आधे इधर खींच रहे हैं आधे उधर खींच रहे हैं, कहां पहुंचेंगे? इसीलिए संसार का मार्ग ये बेचैनी का मार्ग, और सिमरन का मार्ग, योग का मार्ग, ईश्वर का मार्ग, ये चैन का मार्ग है। इसलिए महाराज कह रहे हैं, प्रेमी कम से कम सुबह और सायकाल एक घंटा जरूर सिमरन करना चाहिए, खाना खाने से भी ज्यादा जरूरी सिमरन को समझना चाहिए। ये गुरु ये बात क्यों कह रहा है? सिमरन से लापरवाही करनी, अपनी मूल बर्बादी करनी, तूने जिंदगी ही खत्म कर दी तूने यदि सिमरन का प्रोग्राम तेरा निर्धारित ही नहीं है, ये सब कुछ ये बात क्यों कर रहे हैं? कि वो जानते हैं कि इंद्रियां साधना करते करते तेरे मन के अंदर लीन हो जाएंगे, वैसे तो मौत के वक्त लीन होंगी या सोते वक्त लीन होंगी, लेकिन ये तेरी सिमरन के वक्त ही जागृत हालत में ये इंद्रियां मन के अंदर लीन हो जाएंगी। उस समय अंदर तुझको बोध होगा कि देखो मन के अंदर क्या संकल्प है। एक संकल्प भी जब मन में उठता है तो साधक को तुरंत पता लग जाता है ये संकल्प उठा, और जब वो लीन होता है तो ये संकल्प टूटा। हमारे अंदर बाढ़ आती है उसके अंदर एक संकल्प भी उठता है तो उसको बोध होता है, और जब वो लीन होता है उसका भी बोध होता है। जब वो संकल्प कुछ देर के लिए लीन हो जाता है तब साधक की निगाह कहाँ जाती है? प्राण पे जाती है, क्योंकि इंद्रियां मन में लीन हो गई, मन प्राण में लीन हो गया। अब इस साधक को, इस योगी को प्राण का बोध हो रहा है, प्राण में कितनी शांति है ये वही जानता है, क्योंकि इंद्रियां मन का शोर खत्म हो गया है। इसीलिए उस स्थिति से जब ये वापस लौटता है तो हर हालत में ये वही पहुंचना चाहता है। प्रारब्धवश संसार के कर्म करने को मिलेंगे उसको, जो अर्जुन को प्रारब्धवश युद्ध करने को मिल रहा है, वो चाह रहा है युद्ध ना करूं तब भी करना पड़ रहा है, तो मुझको भी कर्म करना पड़ेगा। लेकिन मन के अंदर एक ही लगन रहेगी, जल्दी से जल्दी काम खत्म हो और प्रभु का आनंद प्राप्त हो। इसलिए वापस वो उसी साधना में करता है, उसी प्राण का बोध करता है। लेकिन साधना जो और एडवांस होती है तो ये प्राण भी धीरे धीरे उसी प्रकार कुंडलिनी के अंदर विलीन हो जाता है जिस प्रकार मौत के वक्त होता है, प्राण तेज के अंदर विलीन होता है। ये वही तेज है, ये वही कुंडलिनी है जो प्राण को अपने अंदर विलीन कर लेती है। विचार करिए, प्राण में इतनी शांति थी तो केवल तेज का इसको अनुभव होगा जीव को, तो कितनी शांति होगी। उस तेज के अंदर केवल तेरा प्राण नहीं प्रवेश किया है, पूरा संसार उसके अंदर प्रवेश कर गया। इसलिए वो जो तेज है वो पूरी सृष्टि का स्रोत है। सूर्य भी वहीं से उदय हुआ है, चंद्रमा भी वहीं से उदय हुआ है, तेरा शरीर भी वहीं से उदय हुआ है, तेरी धरती भी वहीं से उदय हुई है। अब बताइए कि जीव का होश बना हुआ है, लेकिन अब उसका होश किसके प्रति है? तेज के प्रति है। मौत में ये काम नहीं होता। जिस समय मन छूटता है तब जीव मन इंद्रियों सहित प्राण में प्रवेश कर जाता है, जीव का होश नहीं रहता और प्राण ऑटोमेटिकली तेज में प्रवेश कर जाता है और तेज ईश्वर के संग रहता है। इसीलिए उसमें से ये जीव वही मन वही इंद्रियां लेकर नए शरीर में लीला शुरू कर देता है। इसीलिए ये काम मैंने जीते जी करना है, मौत से पहले करना है। मुझको उस तेज का बोध होगा और वो तेज फिर मुझको, उसको वाणी कह रही है कि परस्याम देवतायाम, ये तेज उस परमात्म देव के साथ एक हो जाता है। ये मोक्ष की अवस्था है, ये मेरी अंतिम मंजिल है, इसको मैंने जीते जी प्राप्त करना है। क्योंकि वहां जाकर मुझको पता लगता है कि वो ईश्वर कोई और नहीं था, मैं ही तो हूं, ये मेरा असली रूप है। और जो मैं जो मन के वशीभूत था वो मेरा नकली रूप था, वो मेरा बेचैनी का रूप था। इसीलिए कहा जाता है ये जो जीव है और इसका जो अहंकार है जो कर्तापन के रूप में है, महाराज कहते हैं प्रेमी ये भ्रम है, ये रियलिटी नहीं है। इसलिए वाणी बयान कर रही है, फिर सुन लें इसको। मानुष देह मुकत की नौका, भगत करे जाए भ्रम का धोखा। भक्ति करेगा तो ये भ्रम का धोखा चला जाएगा। ना मन कोई चीज है, ना इंद्रिया कोई चीज, जो है वो केवल ईश्वर है, केवल आनंद है। इसलिए सब जगह रूप ब्रह्म का भेद भ्रम ना कोई, वहां इस जीव का भ्रम समाप्त होता है, वहां कल्याण होता है, वहां आनंद रूप में स्थित होता है। इसके लिए मानव जन्म मिला है, इस काम को। ओम ब्रह्म सिंह।